फिकरात 11 से 13 में तकब्बुर और गरूर का नतीजा ज़िल्लत और रुसवाई है। इसमें फिर दोबारा बादम और इब्लीस का किस्सा आता है, बल्कि सूरत अल-आराफ में ये किस्सा खुल के आता है। और आप देखेंगे कि इसमें इब्लीस के नापाक अज़ायम दिखाए जा रहे हैं आयत 14 से 18 में, जो उसने इंसान के ख़िलाफ़ बोले थे। उसने मोहलत मांगी थी, काला अनजिर नीला यौमी युबसून, यानी इब्लीस डे वन से आपके मेरे पीछे है। और आप देखिए कि इधर ये कस्में कर रहे हैं, ये ट्रिक्स ऑफ शैतान है, शैतान के हथकंडे हैं। पहले अल्लाह से मोहलत मांग रहा है, अल्लाह ने कहा दे दो, शाही फरमान है, ले लो, अल्लाह कौन से उनसे कोई घबराता है। अल्लाह ने कहा जितनी मोहलत लेनी है ले लो, तो क्या कहने लगा, खालफ अभी मागवैता नहीं, ए अल्लाह इस आदम की वजह से तूने मुझे अगवा कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, बदला लूँगा। आप ज़रा इन चीज़ों को देखिएगा, शैतान क्या धमकियाँ दे रहा है। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अंदाज़ अरबी का ऐसा है कि इस पर कितनी बात की जाए। सुपरलेटिव डिग्री, श्योरली आई विल, ज़रूर बिल ज़रूर मैं इनके सीधे रास्ते पर बैठूँगा। मुराद है कि जब भी कोई नेकी करने लगेंगे मैं उसके आगे आ जाऊँगा, रोक दूँगा। सुम्मा लातियन्नहुम, फिर मैं इनके आगे से आऊँगा। मुराद ये कि इनको दुनिया खूबसूरत करके दिखाऊँगा, दुनिया इनके लिए बहुत डेकोरेटेड होगी। मैं मिन खल्फिहिम, और आखरत को बिल्कुल भुलवा दूँगा, पीछे डाल देंगे, लीज प्रायोरिटी होगी इनके लिए आखरत। और अन ईमानिहिम, छोटी नेकी को बड़ा करके दिखाऊँगा, यानी ये अपनी छोटी छोटी नेकियों पर मान करने लग जाएंगे। और अन ईमानिहिम, नेकियों को हकीर जानेंगे और साथ ही रियाकारी से नेकियों को ज़ाया कर देंगे। यानी शैतान के दाईं तरफ आने की ये तीन सूरतें समझ आ गई। छोटी नेकियां करवाएगा लेकिन बंदे को लगेगा ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी की, और नेकियों को कुछ नेकियां आखिर है, नहीं 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 मैं क्यों करूं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। और कुछ नेकियों को रियाकारी से ज़ाया कराएगा, और फिर आगे क्या कहते हैं, अनशमाइलिहिम, लेफ़्ट साइड से भी आऊँगा, यानी बुराइयों को खुशनुमा करके दिखाऊँगा। एंड रिज़ल्ट क्या है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सरियत की शुक्रगुजारी के जज्बे से महरूमी होगी। इब्लीस कह रहा है कि अल्लाह तेरे अक्सर बंदे ना शुक्रे होंगे, तो आप ज़रा बताइए कि क्या आज वो खुश नहीं होता होगा हमारी ना शुक्रियों को देख के। फिर निजात के दो रास्ते वो भूल गया, ऊपर और नीचे का तذकरा नहीं किया, क्योंकि ऊपर से दुआ कबूल होने के अहकाम आते हैं और नीचे ये कि बंदा सजदे में चला जाए। यानी इब्लीस की इन सारी चीज़ों से बचने का इलाज दुआ और सजदे में। फिर याद रखिए कि शैतान खैर ख्वाह बन के आता है, नासे, वेल विशर, आई एम योर वेल विशर। इसमें आयत 19 से 22 में पूरा किस्सा है। वया आदम उस्कुनन तब जौजु कल जन्ना, इब्लीस को मौका मिल गया आदम और हवा को बहकाने का, कैसे आया, वसवसे के नंग से, फवसवसा लहुमा, विस्पर करता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि उसने जो नसीहत करने के अंदाज में अपनी सच्चाई बयान की थी वो क्या थी, वकासमहुमा, उन दोनों के लिए कस्में खाने लगा, क्या, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तो तुम्हारा बड़ा ही वेल विशर हूँ। क्या पता चला कि शैतान को पहचानी है, दोस्त के रूप में आता है, वेल विशर के रूप में आता है, हमें हमारे फ़ायदे बताता है, गुनाह की चीज़ों को बताता है। फदल्लाहुमा बिगुरूर, ग्रेजुअली ऐसे ट्रैप कर लेता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता। जो ही आदम और हव्वा ने उसकी बात सुनी और वो दरख्त का फल चख लिया, तो क्या हुआ, उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो परेशान हो गए, और फौरन फिर उनके अंदर से जज्बा निकला ख़ता पे इतराफ़ का। आयत 23 से 25 में क्या पता चला कि अपनी ख़ता का इतराफ़ कर लेना ये आदमियत है, और अपनी गलती पे अकड़ना ये इबलीसियत है। तो आपके मेरे लिए ये खूबसूरत सी दुआ है जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस वक़्त सिखाई थी। काला, दोनों ने, यानी आदम और हव्वा ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कह रहा अब हमने जुल्म किया, क्या पता चला, गलती का एहसास होने पे शर्मिंदा होना चाहिए, अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए और फौरन अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। इंसान से गुनाह होते हैं, अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ करने पे कादिर है। फिर उसके बाद चूँकि आदम और हवा के लिबास के उतरने का तذकरा हुआ, तो यहाँ नोट कीजिएगा कि इब्लीस का हदफ, टारगेट, गोल यह कि इंसान कपड़ों से आज़ाद हो जाए। तो आगे फिर लिबास में तकवा इख्तियार करने की नसीहत हुई आयत 26 में, और मकासदे लिबास हैं इस आयत में। अगर आप देखें, लिबास हैं युवारी सौआतिकुम वरीशा, ये दो लफ्ज़ आप हाईलाइट कीजिए। लिबास के दो मकासद, नंबर एक सतर पोशी हो, काबिले शर्म हिस्से छुपें। हर इंसान के जिस्म पे कुछ ऐब होते हैं, अल्लाह ने इस लिबास को आपके मेरे लिए एक इज्जत का जरिया बना दिया। आप देखिए कि नेकेड बॉडी गोश्त का एक पहाड़ है। गाय भैंसों बकरियों को देखिए, उनके जिस्म पे जो धब्बे हैं वो सबको दिखते हैं। अल्लाह ने हमारे ऊपर एक खूबसूरत सी कवरिंग डाल दी लिबास की सूरत में। और सतर पोशी लिबास कैसे करेगा, दो शराइत लिख लें, वसाफ ना हो और शफाफ ना हो। वसाफ वसफ से, इतना तंग स्ट्रेची टाइट ना हो कि जिस्म का एक एक कट दिखे, और शफाफ ना हो, सी थ्रू ना हो। बस इन दो चीज़ों को समझें तो काफ़ी बात समझ आती है। हाँ, दूसरा मकसद क्या है कि बायस ज़ीनत हो, आप मोती लगा लें, सितारे लगा लें, नक्शी लगा लें, दबका सलमा जो चाहें, बायस ज़ीनत हो सकता है, लिबास खूबसूरत हो सकता है। हाँ, लेकिन परहेजकारी और तकवा बेहतरीन लिबास है। तो यहाँ पहली दफ़ा एक किस्म की खुल के लिबास के बारे में बात आ रही है कि कोई भी जो इंसान होगा ना, वो लिबास पहनेगा। अच्छा, आज कुछ लोगों ने डार्विनिज्म का नाम लेकर एक बात मारूफ कर दी कि हम जानवरों से आए हैं, यानी हम मंकी से आए, बंदरों की औलाद हैं, यानी नाउज़ बिल्ला हमारे बाप दादा बंदर थे। इतना ज़ोर शोर क्यों है इस पे, उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने अगली आयत में बता दिया, आयत 27 में, कि बेहयाई फैलाने वाले शैतान के एजेंट हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो ना, जानवर कपड़े नहीं पहनते, तुम भी ना पहनो। और जानवर किसी हद तक अपने बच्चों को तो पाल पोस लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, तो तुम भी अपने बूढ़ों को ओल्ड होम्स में रखो। यानी एक पूरी स्ट्रेटेजी, आप इन आयतों की डिटेल तफसीर सुने तो हैरान हो जाता है इंसान कि कैसे बेहयाई फैलाई जाती है। और अल्लाह हमें नसीहत करते हैं कि देखो, तुम शैतान से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा चुका, तुम्हें निकाल दे। फिर आयत 28 में पता चलता है कि बेहयाई फैलाने के लिए बज़ाहर खुशनुमा जवाज़ क्या है, वह इजाफा आलुफा खीशतन कालु वजद नाले ही आबाना, यानी लोग अमूमन अपने बाप दादा का नाम लेकर बेहयाई फैलाते हैं, कभी तो मज़हब के नाम पे और कभी कल्चर के नाम पे। फिर आयत 29:30 में अल्लाह अदल का हुक्म देता है, इस मौजू पे बात है, यानी दीन अदल और इंसाफ का नाम है। हर चीज़ में बैलेंस पे रहिए। मुशरिकीन मक्का थे, ये कपड़े पहने बगैर तवाफ करते थे, नमाज के वक्त में बिल्कुल नेकिड हो जाते, और गुमान क्या करते, इन कपड़ों में चूंकि हम गुनाह करते हैं तो हम नेचुरल ड्रेस में आते हैं। इससे भी आप देखिए कि बहुत बेहयाई फैली। आज भी न्यूड स्टैचूज आपको कई जगहों पे दिखेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा दुरुस्त नहीं है। फिर आए 31 से 32 में रहबानियत और तर्क दुनिया की नफी है। जो ही लिबास की बात आती है तो अल्लाह ताला इस मौजू को सामने ले आते हैं कि देखो, अब मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि तुम दुनिया की किसी चीज़ से फ़ायदा ना उठाओ, बल्कि नमाज के वक्त पे तो और ज़्यादा साफ़ सुथरे बन के जाओ। मस्जिद में आरास्ता होकर जा सकता है, एक मर्द जाता है तो वो अच्छे साफ़ कपड़े पहनेगा, खुशबू लगाएगा, मिसवाक करेगा। औरतें भी अगर जाती हैं तो उनको वहाँ जाकर अपने आप को पर्दे में रखते हुए साफ़ सुथरे अपनी तहारत के साथ जाना चाहिए। फिर आए 31 में खाने पीने के लिए कुछ बातें, वह खुलू व शरबू वला तुसरिफू। इसराफ क्या होता है? हदों से गुजरना। करें क्या? खाना मुतवाजन हो। आजकल भी ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही खा लिया जाता है। मुतवाजन खाइए, साफ़ सुथरा खाइए, तैयब खाइए, और खाने और लिबास के ज़ियाँ और इसमें इसराफ से बचना चाहिए। यानी खाइए भी साफ, वो खाइए जो डाइजेस्ट हो, वो खाइए जो आपके लिए एनर्जी फुल हो। ये नहीं कि हम सिर्फ ज़ुबान के चस्के की खातिर सारे दिन के भूखे मैदे को एकदम भारी चीज़ों से भर लें और सो ऑन। फिर इसके बाद आयत 33 भी अहम है, क्या क्या हराम है। आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े अरसे के बाद हराम की वो डिटेल्स आने लगती हैं, ताकि इंसान कुरान को पढ़ते वक्त इस चीज़ पे ख्याल रखे कि अल्लाह ने किस चीज़ को हलाल और किस चीज़ को हराम किया। फिर उसके बाद आयत 34 का टॉपिक क्या है, हर कौम पर जवाल आएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फिर आयत 35 से 36 में कामयाबी और नाकामी के रास्ते बताए गए, और वो क्या हैं कि अल्लाह ने अपने नबी भेजे जो नबियों की बातों को लेकर उन किताबों पे ईमान ले आते हैं, उनको अल्लाह ताला कामयाब कर देगा। और इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने अल्लाह की बात को ना माना ना समझा, तो वो तो नाकाम होके ही रहेंगे। फिर आए 37 से 39 में गुमराही फैलाने का बुरा अंजाम बताया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि वो लोग जो दुनिया में गुमराहियाँ फैलाते हैं, कल क़यामत के दिन जब अपने अंजाम से फारिग होकर जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ उन लोगों को याद करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डराने वाली आयत है कि खुद भी भटके और दूसरों को भी भटका दिया। और आयत 40 से 41 में पता चलता है कि सरकश लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये कुरान का वो नुक्ता है जहाँ आसमान के दरवाज़ों की बात हो रही है। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अनहा ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समा। मरने के बाद हमारी रूह आसमान की तरफ जा रही होती है, लेकिन जिस शख्स ने बुरे काम किए होते हैं उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते। इस तरह ज़िंदगी में उसके लिए दुआओं की कबूलियत के कभी दरवाजे नहीं खुलते। आपका मेरा काम क्या है कि सरकशी से बच जाएं। फिर आगे आयत 42 से 43 क्या है कि जन्नत अमल की वजह से अता की जाएगी, ना कि ख्वाहिश की वजह से। वरना तो कोई एक शख्स भी आप देखिए कि दूरी ना रहे, जन्नत की ख्वाहिश किसको नहीं होगी, तमन्ना भी नहीं। तो जन्नत सिर्फ दुआओं से नहीं मिलती, सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं मिलती, बल्कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान के बाद अमल सवाले करने वालों को क्या देगा? ऐसी जन्नत जिसमें वो हमेशा रहेंगे। फिर इसमें दिलों के कीने दूर करने की बात हुई कि हम उनके दिलों से कीना या हसद और बुग़्ज़ निकाल देंगे। इसके बाद अब वो हिस्सा है जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरत अल अराफ है, और आगे कुछ जन्नती और जहन्नमियों के मनाजिर हैं। आयत 44 से 45 में अहले जन्नत की अहले जहन्नम से गुफ्तगू है। बहुत ही दिल पे बोझ पड़ता है इनको पढ़ते हुए। इस दुनिया में लोग घुले मिले रहते हैं, एक ही घर में एक अच्छा काम करने वाला एक बुरा, आगे जाकर बिल्कुल बदल जाएगा। वनादा असहाबुल जन्नति असहाबुन नार। जन्नती जहन्नमी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि बताओ अल्लाह के वादे पूरे हुए? जन्नती कहेंगे हमसे भी पूरे हो गए, और जहन्नमी कहेंगे हमसे भी पूरे हो गए। यानी वो जन्नत में पहुंच गए, वो जहन्नम में पहुंच गए। फिर आयत 46 से 49 में अस्हाबे आराफ का तذکرہ है कि आराफ क्या मुकाम है, जहां नंबर एक वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी। सिर्फ एक नेकी की कमी उनको जन्नत में जाने से रोक रही। हमारा जो रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदु अन्हु वाला दौरे कुरान है, आप उसके पारा नंबर 9 का सिर्फ शुरू का आधा घंटा सुन ले, 15-20 मिनट, बल्कि बेहतरीन तरीके से हमने इस चीज़ को वहाँ समझा कि कैसे वहाँ हम जाकर रोक दिए जाएंगे। कई दफ़ा ज़िंदगी में नेकियों के मौके आते हैं और अभी भी आए हुए हैं, लेकिन हम कहते कोई और कर लेना, मैं क्यों करूँ, मैंने बहुत कर ली। और दूसरी वजह आराफ पे ले जाने वालों की या खड़े करने वालों की क्या होगी कि नेकियां बहुत सारी हैं लेकिन कोई एक गुनाह। और उसमें आप सुनिएगा, मिसाल दी है एयरपोर्ट पे सामान की। कभी कभी हमारे सामान में कोई एक ऐसी चीज़ निकल आती है, कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है कि हमें फ़्लाइट में सवार होने नहीं दिया जाता। फिर आयत 50 से 52 में अहले जहन्नम की अहले जन्नत से गुफ्तगू है। ये कैसे होगा? आज सेटेलाइट का तसव्वुर है, बिल्कुल जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे अन अफीद अलैना मिनल मा, हमारे ऊपर कुछ पानी डालो, या चलो जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है, यानी अंगूरों का एक खोशा फेंक दो, कोई भी नेमत जो भी वहाँ होगी। तो जवाब क्या मिलेगा? ना, इन अल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन। अब यहाँ काफिर लफ्ज़ सुनकर हम फिर ठिठक जाते हैं कि अल्लाह ने जन्नत की नेमतें काफिर पे हराम किए, लेकिन यहाँ देखिए कौन से लोग हैं, अल्लज़ीन तखज़ू दीनहुम लहवा वलईबन। यहाँ वो काफिर नहीं है जिसको हम असल में लीगली काफिर कहते हैं, यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन को खेल और तमाशा बना दिया था और उनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखा दिया। इसमें हम मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला में क़यामत के दिन की रसवाई से बचा दे। फिर आयत 53 में रोज़े क़यामत गाफिल लोगों की जो हसरत है उसका तذکرہ है। आज गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कल वहाँ रो रहे होंगे। और आयत 54 में अल्लाह ताला हकीकी रब है और वही है जिसके ऊपर नज़रें लगानी है, जो रात दिन के हमारे निज़ाम को चला रहा है। और इसके बाद फिर आयत 55 से 56 में दुआ के कुछ अदाब हैं। उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कभी ऊंची आवाज़ में पुकारो, कभी आहिस्ता पुकारो, और उसको ज़्यादती करने वाले अच्छे नहीं लगते। ज़मीन में फसाद ना करो उसकी इसलाह के बाद, कभी का खौफ और तमा से पुकारो, उसकी रहमत करीब है। तो दुआ के कुछ आदाब सीख लेते हैं। नंबर एक, आजजी और इनकसारी से मांगना। अब दुनिया में भी आप किसी से रोब से बात करें ना तो वो नहीं देगा, बच्चा भी आपसे गुस्से में बात करे ना तो आप कहेंगे पहले आप तमीज़ से बात कीजिए हमसे। दूसरी बात, चुपके चुपके से मांगना चाहिए, दुआ में ज़्यादती नहीं करनी, ज़मीन में फसाद नहीं फैलाना वरना दुआएं कबूल नहीं होंगी, और दिल में अल्लाह ताला के अजाब का डर भी हो। और भी बहुत सारे आदाब हैं जो हम सुनते हैं। पिछले साल जो हमारा DQ22 था उसका पूरा मौजू ही दुआ था, पावर ऑफ द दुआ। अगर आपको वो यूट्यूब पे मिल जाए, नूरुल कुरान टीवी पे, तो रमज़ान के बाद उसको एक एक करके सुनना शुरू करें। 30-32 दिन हमने सिर्फ दुआ के मौजू को हर पारे के अंदर से देखा था। फिर उसके बाद आगे आयत 57-58 में बंजर और जरखेज़ ज़मीन है। ज़मीनें मुख्तलिफ होती हैं, कुछ में झाड़ झंकार उगती है और कुछ में फसलें उगती हैं। असल में यहाँ से अंबिया कराम की कौमों के तस्करे हैं। अल्लाह ताला ने हर दौर में लोगों की हिदायत के लिए अंबिया को भेजा, लेकिन कुछ ने माना और बहुत सारों ने नहीं माना। उसमें सबसे पहला किस्सा कौम नूह का है, जो आयत 59 से 64 पे मुहित है। कैसे अल्लाह ने हज़रत नूह को भेजा, लेकिन उस कौम में जू के बिगाड़ आ चुका था। अल्लाह ताला ने फिर उनको तबाह किया, आसमान से भी पानी बरसा, नीचे से भी गया, और इनका किस्सा डिटेल से सूरत हूद में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। एंड पे 60-70 के करीब लोग थे वो बचाए गए। और आयत 65 से 69 में इनसे अगली कौम हज़रत हूद इनकी तरफ आए थे, जिन कौम को कौम आद कहा जाता है, उनकी कशमकश का तذکرہ है। इनका भी किस्सा इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। और सूरत हूद के नाम पर एक पूरी सूरत है इस नबी के नाम पे। फिर कौम आद का इबरतनाक इंजाम आयत 70 से 72 में है, और इन्होंने नबी के साथ जो बहस मुबाहसे किए थे अल्लाह ताला ने उस पे इनको पकड़ा, और फिर बिलाखिर जब कौम पे अजाब आता है तो वो तबाह बर्बाद कर दी जाती है। इस कौम के बाद एक और अगली कौम का हम किस्सा पढ़ेंगे, कौम समूद तो उनका नाम है। उनको जो दावत दी गई वो आयत 73 से 74 में है, और इस कौम को भी अल्लाह ने अपनी एक निशानी दी थी, लेकिन इन्होंने उसकी नाकदरी की। और ख़ास तौर पे फिर आयत 76 से 77 में इनके जो बड़े सरदार थे उनके तकब्बुर और सरकशी का तذکرہ है। क़ालल्लज़ी नस्तकबरु इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून, यानी जो भी किसी सोसाइटी के बड़े लोग होते हैं वो अमूमन नबी की या नबी के साथ जो लोग होते हैं उनकी बात को नहीं मानते। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो आयत 78 से 79 में कौम समूद का इबरतनाक इंजाम है। फ़ाहज़त हुमुर रजफ़तु, आप देखेंगे हर कौम पे कोई आसमानी आफत आई थी। किसी पे आसमान से बारिशें हुई, किसी पे जलजला आया, कोई कुछ। क्या पता चला कि जो कौमें नबी की बात नहीं मानती वो दुनिया में जीने का हक ख़त्म कर देती हैं। और फिर कौम लूत की कहानी आयत 80 से 84 के बीच में है, और ये हज़रत इब्राहिम ही के दौर के लोग थे। इस कौम में होमोसेक्सुअलिटी का मरज़ था, और अल्लाह ने इनको आसमान से पत्थरों के ज़रिए से तबाह बर्बाद किया। और फिर एंड पे कौम शुएब की दावत शुरू होती है आयत 85 से 87 में, और यही मज़मून फिर अगले पारे में यानी कालल मलाऊ 9वें पारे में चलेगा। ये कौम माली बिगाड़ का शिकार थी, कारोबारी लोग थे, बिजनेस माइंडेड थे, लेकिन माली खयानतों में एक क्या था, डंडी मारना, जिस पे एक आगे पूरी सूरत मुतफ़िफ़ीन के नाम पे आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी इसलाह की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनु जज़ा, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।